ಸಾಭ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾಜುಭಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಸರ್ವೋಭಿನೇದೋ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜೀವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೇ ತಂ ನಯಾಮಿ ಶರಣಂ ಕೃತೇನ. कल से भागवत की कथा आरंभ की, उसके बाद से आज आरंभ कर रहा हूं. नारद जी भक्ति के आचार्य हैं. व्यास जी यद्यपि भगवान के अंश हैं, किंतु शिष्य हैं. ये एक समय पत्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए चिंता कर रहे थे कि मैंने वेदों का विभाग किया. वेद मैंने क्या, कोई पुस्तक नहीं. गीता पुस्तक नहीं है, गीता दिव्य ज्ञान है. वेद मैंने जानना, ज्ञान. गीता, गीता माने क्या, गीयते त्रायते इति गीता. जिसका गान करने से त्रायते महान भय से आदमी तो ये दिव्य ज्ञान है. किताब के जलने से भी वो ज्ञान नहीं जलता, तो वैसे वेद, वेद बने जानना. हम कौन हैं, सत्ता की सृष्टि करने वाला कौन है, हमको क्या चीज जानना चाहिए जिसे हम सदा के लिए सुखी और शांति हो सकते हैं. इस दिव्य ज्ञान का नाम वेद है. उसका चार विभाग किया. साधारण लोगों की जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, उन स्त्रियों के लिए और उन लोगों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की. वेदों का सार लेकर के कहानी के रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में. जैसे साधारण लड़ने भिड़ने वाला भी आदमी अर्जुन भीम और कौरवों का युद्ध पढ़ करके उनमें एनर्जी आएगी और उसको कौतूहल से भरे, अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ. इस तरह से महाभारत की रचना की, उसमें दिव्य गीता का संदेश दिया. इसके बाद उन्होंने वेदों का सार एकत्र करके ब्रह्मसूत्र ग्रंथ नामक एक रचना की, जो भारतवर्ष के जितने बड़े विद्वान आदिकाल से अब तक हैं उसके लिए टीकाएं कर रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा कर रहे हैं. इसके बाद उन्होंने 36 पुराण, उपपुराण, उपपुराण, शाखा पुराण उन्होंने लिखा. इतने ग्रंथ लिखे कि एक जीवन में हम उन ग्रंथों को कभी शेष नहीं कर सकते, 10 जन्म लग जाएंगे. और उसकी एक बात को समझना तो बहुत कठिन बात है. जैसे ग्रंथ में न्यूटन ने आविष्कार किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये थ्योरी क्या है समझना, ये सहज बात नहीं है. इसके पहले भी थी, अभी भी है, पीछे भी रहेगा. न्यूटन से लाखों वर्ष पहले इसका इन्वेंशन हुआ. तब उन्होंने लोगों को समझाया. तो इस तरह से ये सब चीजें उन्होंने सब कुछ की. और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ समझाना है, जो कुछ भगवान के अवतार हैं, इसलिए जो कुछ समझाना है उन्होंने सब ग्रंथों में लिखा. किंतु तो भी उनका चित्त संतुष्ट नहीं था. सोच रहे हैं जी क्या मेरे अंदर की कमी है. मैं नहीं समझ सकता कि हमको कोई चीज, संसार की कोई चीज की जरूरत नहीं है. मैं समझ रहा हूं संसार से हमारा अटैचमेंट भी नहीं है. मैं ब्रह्म को भी समझता हूं, जो ब्रह्म क्या है उसका रियलाइजेशन भी हमको है. तभी न जाने क्यों हमारे अंदर में क्या कमी है जो हमारी चित्त प्रसन्न नहीं हो रहा है. इतने में ब्रह्मा जी आए, नारद जी आए. नारद जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनको उनके सामने बैठे, उनका पैर धोया जैसे हमारी हिंदू की रीति है, पैर धोए, उनको पानी पिलाया, हाथ जोड़ करके उनसे प्रश्न पूछा। नारद ने खुद पूछा, अभी तुमने तो धर्म कर्म सभी कुछ कर लिए और सब लोगों को उपदेश देने के लिए ग्रंथ भी लिखे बहुत सा, और उसकी अनुभूति भी तुमने की, अनुभूति के साथ में लिखा। आजकल कल लेखक अनुभूति के नहीं होने पर भी ऐसे ही लिख मारते हैं, जितने भी उपन्यास है ये सब क्या चीज है, अनुभूति नहीं है तो भी कुछ लिख मारते हैं। आपने तो ऐसा नहीं किया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन करके तब उसको आपने लिखा है। फिर तुम्हारा मुख सूखा सूखा क्यों है, क्यों नहीं, तुम्हारे अंदर में शांति क्यों नहीं है, क्या बात है? आप लोग इन चीजों को समझने की चेष्टा करेंगे और जीवन में यदि धारण हो सके तो धारण करने की चेष्टा करेंगे। अपनी बुद्धि का इंटेलिजेंस को काम में लगाएंगे, यदि कुछ पूछना भी आता पूछ लेंगे बेधड़क, कोई हिचकने की बात नहीं है। ये तो हम लोगों का क्लास चल रहा है और मैं दो दिन में भागवत पूरा कर भी नहीं सकूंगा, संभव पर नहीं है। मैं तो आंशिक रूप में कुछ इसकी साथ दो एक बातें जो हम लोग समझ सकते हैं आप लोग समझ सकते हैं और हमने जो रियलाइजेशन किया है उन चीजों को मैं बतलाऊंगा, जिसको श्रवण करने से आप लोगों का भी कल्याण होगा, समझेंगे अपने जीवन में उसको आप लोग अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। तो नारद जी ने जब पूछा तो हाँ ये बात तो ठीक है, मैं कल ही से ऐसा सोच रहा, मैंने इतना सब कुछ किया, मैं ज्ञान का अथाह मेरे अंदर में ज्ञान है, अनुभूति भी है, सब कुछ मैंने किया, किंतु मुझे प्रसन्नता नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, कुछ मेरे अंदर में कमी है, किंतु उस कमी को मैं नहीं समझ पाता। मैं आपका शिष्य हूं इसलिए कृपा करके आप ही बतलाइए, आप वैद्य हैं मैं रोगी हूं, आप गुरु हैं मैं शिष्य हूं। गुरु माने क्या? संसार की सारी विद्याओं को समझकर जिससे कि हमारा आत्मा का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण हो, इस चीज को समझ लेता है, उसको कहीं स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, उसको किसी ज्ञान की कमी नहीं है, उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी समस्त शंकाओं को दूर कर सकता है, वो गुरु है। परब्रह्म की अनुभूति है जिसको, और संसार में तनिक भी कहीं अटैचमेंट नहीं है, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म निष्णा तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुषय उत्तम। यदि परब्रह्म को जान लिया तो उसको किसी कमी नहीं, उसको किसी दूसरे लोगों के यहां नास्तिक लोगों के यहां पढ़ने जाने की जरूरत है कभी नहीं। आजकल स्कूल और कॉलेज विशेष करके नास्तिकता के अड्डे हैं, उसे यदि निरक्षर रहा जाए तो प्रेम हृदय में रहेगा, माता के पिता के प्रति आदर रहेगा, पड़ोसियों के प्रति आदर रहेगा, उसको बम बनाने की जरूरत नहीं होगी, उसको किसी से भय और शंका नहीं रहेगी। मुल्क आना बल्कि अच्छा है, क्या होगा ला, हाय 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 ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, उसे तो मूर्ख रहना अच्छा है। भगवान ने विश्वास कर रखे पांच पड़ोसियों से घर में प्रेम रहे, स्त्री पति पत्नी पुत्र गुरुजन में आदर रहे तो वो अच्छा है। इसलिए आज तक की नास्तिक स्कूल कॉलेजों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो चोरों के हृदय को बदल दे, डकैतों के हृदय को बदल दे, बुरे लोगों के हृदय को बदल करके प्रेम का संचार कर दे। कॉलेज में और इसमें रिसर्च और वैज्ञानिकों के भंडार में ये सब चीजें नहीं है। इसलिए नारद जी ने कहा, जी देखो तुमने सब कुछ किया है, ज्ञान की तो बातें सारी लिख दी और आपने ये लिख दिया गणेश की पूजा करने से, गणेश ब्रह्म हैं, उनकी पूजा करने से तुमको धन पुत्र लक्ष्मी ऐश्वर्य सब प्राप्त होगी। आपने ये लिखा ये गणेश दुर्गा जी समस्त शक्तियों की मूल हैं, जगत जननी हैं, इसलिए उनकी पूजा करने से पुत्र परिवार सब कुछ सुखी और शांति रहेगा। कहीं आपने शिव पुराण में आपने शिव की ऐसे लिख दी, आपने कभी कहा कि ब्रह्म ज्ञान जब होगा तो सब आप देखेंगे ये सभी कुछ ब्रह्म है और बाकी सब झूठा है, ये भी कहीं लिख दिया। आपने एक चीज सबका सार निचोड़ करके आपने ऐसा नहीं कहीं लिखा जो भगवान की सीमा कौन है, भगवत्ता कहाँ है, और ये 50 जो है राम सिंह कल्कि बराह पुराण ये सब जितने हैं, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, ये सब एक ही के अंतर्गत में कैसे हैं ये नहीं समझाया। हमारे क्रिश्चियन भाई लोग, मुसलमान लोग, हम लोग में भी बहुत से लोग कहते हैं भारतवर्ष में बहुत भगवान है, हम लोगों में एक है। तो आपने निश्चित तौर पर इन चीजों का समाधान नहीं किया। और एक चीज की बात, ब्रह्म ज्ञान की तो बात की, ब्रह्म ज्ञान लाखों किंतु हृदय में प्रेम न रहे तो ज्ञान का कोई तात्पर्य नहीं। एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, एमए पीएचडी डीलिट इत्यादि हमारी जितनी यूनिवर्सिटी और उससे भी ऊपर में जो भी कुछ शिक्षा है सब ले लिया, किंतु किसी के लिए हृदय में प्यार नहीं है, तो उस शिक्षा का मतलब क्या है? कुछ यदि अपनी स्त्री से प्रेम नहीं है, बच्चों से प्रेम नहीं है, पड़ोसियों से प्रेम नहीं है, छात्रों से प्रेम नहीं है, टीचरों से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम ही नहीं है, प्यार नहीं है, तो उस विद्या का मतलब क्या है? तो आपने भगवान का निर्मल यश आपने तो स्थिर नहीं किया है। भगवान की सीमा, भगवान एक है और कौन है, और सभी भगवान एक ही तत्व है, किस रूप में है आपने नहीं कहा, आपने अलग अलग जैसे खिचड़ी पका दी। आपने प्रेम की कोई बात नहीं लिखी। ये जो भगवान का अमल जस है इसका वर्णन करें, उनकी बड़ी विचित्र मनोहारी लीलाएं हैं जिसके श्रवण करने से ही भगवान हृदय में बैठ जाते हैं, उसे शांति और सुख की अनुभूति होती है, आपने नहीं लिखा। कहते ये तो बात ठीक कहते हैं, मैं मुझे क्या करना चाहिए। तो आप एक बात कीजिए, भगवान का शरणागत होजिए, भक्ति जो का अवलंबन कीजिए। और भक्ति जो किसको कहते हैं? प्रभु आप ही जगत के सर्वस्व हैं, मैं आपका नित्य दास हूं, आपको भूलने से हमारी ये दुर्गति है, मैं शरीर तक ही सीमित रहता हूं, इसका अतिरिक्त कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए मैं जैसा हूं जैसे हूं आपका मैं शरणागत हो रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रिय, अम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम शरण माम एव। अंगुली देकर के कहते हैं, सब जगह गीता में तीन जगह माम एव है, माम एव माम एव माम माम एव माने मैं ही। मत्ता परतरम नन्यत किंचित अस्ति धनंजय, हमसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है, इसलिए उस भगवान को शरणागत हो जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आप हमको कृपा करें। से जानत जेहु देहु जनाई, आप जिसको अपना तत्व जना देते हैं वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता है। साथ ही साथ उन्होंने अपना अनकंडीशनल सरेंडर किया भगवान, नदी में जाकर के सरस्वती में उन्होंने जल का आचमन किया, बैठ गए और प्रभु मैं आपका हूं, ध्यान लगाया भक्ति योग से। साथ ही साथ अपश्यत पुरुषम पूर्ण, उन्होंने देखा क्या, अपश्यत पूर्णम पूर्ण मायां च दुर्गापाश्य, ब्रह्म को उन्होंने देखा एक और परिपूर्ण देखा। कैसे देखा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परतत्व है। जैसे एक ही चांद विभिन्न दिनों में सूर्य की छाया और पृथ्वी से ढक जाने से, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के द्वारा ढक जाता है तो एक एक दिन में एक एक कलाएं दिखती हैं, किंतु चंद्र एक ही है, दो चंद्र नहीं है। और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां सूर्य की किरणें चंद्र पर सब समय पड़ती हैं, पृथ्वी से ढकती नहीं है, तो उसको हम पूर्णिमा के रूप में अर्थात परिपूर्ण चांद के रूप में देखेंगे। तो भगवत्ता की सीमा कहां है? कृष्ण में है। और जब वो थोड़े थोड़े प्रकाशित होते हैं उन्हीं को उपासना के तारतम्य से उन्हीं के कोई नृसिंह रूप में देखते हैं, कोई वामन रूप में देखते हैं, उनको कोई राम के रूप में देखते हैं, कोई बुद्ध के रूप में देखते हैं, कल्कि के रूप में देखते हैं। वो कलाएं हैं भगवान, वो सभी एक ही है, किंतु देखने के दृष्टि के वजह से एंगल ऑफ विजन, उपासना के दृष्टिकोण से देखने से उनमें ये अलग अलग, ये राम है ये कृष्ण है दिखते हैं। जैसे एक ही चंद्र जब उसकी तीन कलाएं होती हैं तो उसे तृतीया कहते हैं। वो तीन कलाओं में जितना प्रकाशित होता है उतना ही प्रकाश देगा, पूर्णिमा जैसा पूरा प्रकाश नहीं देगा, किंतु चंद्र एक ही है। इस चीज को समझ, ऐसे भगवान दस बीस नहीं है। अल्लाह, खुदा, रहमान, ईश्वर, कृष्ण, परमात्मा, ब्रह्मा, ये सब बुद्ध, ये अलग अलग नहीं है, किंतु दिखते हैं। किंतु देवताओं को जो दुर्गा, काली और जो शंकर, हनुमान जी, गणेश जी, इनको गीता में कहा गया विभूति। विभूति को समझने की चेष्टा करें, कृष्ण के ही है ये अवतार, जितने हैं कृष्ण ही है। कभी राम के रूप में आए हैं धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, मर्यादा की प्रतिष्ठा करने के लिए, इसलिए राम और कृष्ण अलग नहीं है। किंतु शंकर और गणेश जी, इनकी विभूतियां हैं। विभूति माने क्या? उनकी शक्ति और गुणों का जहां पर जीवों में प्रकाश होता है तो उसको विभूति कहते हैं। इसलिए शंकर जी, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये साधारण जीव जैसे नहीं है, इनमें बहुत सी शक्तियां हैं। भगवान की शक्ति उसमें प्रवेश करके और जगत का रक्षण इत्यादि करते हैं। किंतु ये लोग कृष्ण नहीं है, कृष्ण की विभूति है। कृष्ण से अलग मत देखिए, किंतु कृष्ण मत देखिए। सब लोटे में पानी है, पानी तो ठीक है किंतु सब लोटे एक नहीं है। वैसे हमारे अंदर में भगवान तो हैं, किंतु हम भगवान नहीं है। ऐसे ही देवता देवी जितने हैं वो भगवान नहीं है। राम कृष्ण ये भगवान हैं, किंतु देवियां हैं, ये जगत में आपकी जो इच्छाएं होंगी उसको पूर्ण करेंगे भगवान की शक्ति से। इसलिए उनको अलग मत देखो उनकी विभूति के रूप में। एक पीपल का पेड़, कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल हूं, किंतु पीपल ही भगवान है, ऐसा मत देखो। उनकी विभूति है, उसमें गुण शक्ति कुछ है, उसमें शक्ति का कुछ प्रतिबिंब है, इस रूप में देखो। दुर्गा जी का दो रूप, एक जोग माया और एक महामाया। जब जगत का सृजन इत्यादि करती है, जीवों को दंड देती है, तो उनको कहते हैं महामाया। और अपने असल स्वरूप पर आती हैं तो कृष्ण के साथ में जो उन्होंने जन्म लिया था उनको जोग माया कहते हैं। वो मुक्त पुरुषों को भगवान की सेवा में नियुक्त करती हैं। एक ही सब चीज का विस्तार है किंतु एक नहीं। इसलिए कुछ विभूतियां हैं, कुछ भगवान ही हैं, किंतु जैसे कृष्ण हैं, उन्होंने ये देखा, अपश्यतपुर संपूर्ण, उन्होंने इन चीजों को देखा। रामकृष्ण इत्यादि सभी एक होने पर भी विभिन्न समयों में लोगों के उपकार के लिए विभिन्न रूप जैसे धारण करके आते हैं। दूसरी बात एक और भी समझिए, वो जो कृष्ण है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो निर्गुण निराकार हैं, निरंजन अव्यय हैं, किंतु भक्तों के लिए आकार धारण करके जगत में आते हैं, तब उनका शरीर दिखते हैं, तब वो सगुण साकार कहलाते हैं। बात ये गलत है। एक ही कृष्ण, राम इत्यादि जो है, शंकर जी भी, उनका रूप नहीं देखते हैं इसलिए उनको निर्गुण कहते हैं। वो सब समय ही अपराकृत गुणों के भंडार, उनका अपना रूप है, कृष्ण का अपना रूप है। यदि रूप नहीं होता तो ये जगत नहीं होता। कह रहे हो, बाइबल में ऐसा कहा गया, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन ईएच क्या मतलब, भगवान ने अपने रूप के अनुसार में इस जगत में मनुष्यों को बनाया, यदि उसका रूप ही नहीं है तो ये रूप कहां से आया, नहीं तो बाइबल से हटा दो यदि भगवान को एकदम निर्गुण निराकार समझते हैं तो। उसी प्रकार से हमारे कुरान में मुसलमानों भाइयों के कुरान में भी ऐसा ही लिखा, अन्ना रहा खड़ा का मैन सूरत ही, मैन सूरत ही अपने सूरत के अनुसार में रूप के अनुसार में खुदा तल्ला ने हम मनुष्यों को बनाया। सतय समय इदम अग्रासी, कृष्ण कहते हैं मत्त परतरम नन्नत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मैं जगत का सबसे परात्पर तत्व हूं, हमसे बढ़कर के कोई पर तत्व नहीं है। कौन कह रहा है, निराकार ब्रह्म कह रहा है, न तो उनके सामने जो कहे हैं यही निर्गुण निराकार है, क्योंकि हम देख नहीं पाते इसलिए इसको निर्गुण कहते हैं। और जब हम भक्ति के उस स्टेज में चले जाते हैं ज्ञान की परिधि में, जब उनको हम दर्शन करते हैं तो उन्हीं को सगुण साकार कहते हैं, दो वस्तुएं नहीं सब समय सच्चिदानंद है। इसलिए आप लिखिए व्यास को कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम कृष्ण राम बुद्ध कल्कि बराह ये सब भगवान है, भगवान किसको कहते हैं, भगवान। भगवान है क्या, छह गुण है, वो गुण क्या है, ऐश्वर्य समंजस्य अलौकिक, उनमें शक्तियां हैं, एक पलक में ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, अखिल ऐश्वर्य उनमें है, अखिल ज्ञान उनमें है। गीता का ज्ञान आप लोग देखते हैं ये कैसा ज्ञान दिया है, विश्व में ऐसा श्रेष्ठ कोई ग्रंथ नहीं है, सभी विद्वान लोग उसे मान रहे हैं। जब जदवंशी सारे जब लड़ करके कट रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं, तनिक भी कोई उनके अंदर में खेद नहीं, परम शांति रूप में बैठे हैं, यह ऐसा कौन कर सकता है। ऐश्वर्य रूप, इतना सुंदर रूप, ये भीड़ भी उनको देख करके मुक्त हो जाती है। धन्यास्म मूढ़मतयो हरिण्येता ज्ञानंद नंदनमुपात विचित्र वेशम, जब कृष्ण बंधु मधुर बंसी बजाते हैं, इतना सुंदर रूप, मानो मेघ काले मेघ पर ये पीते वस्त्र मानो विद्युत की तरह लहरा रहे हैं, वैजयंती माला और मधुर मधुर मंद मुस्कान के साथ में बंसी बजा रहे हैं, हिरणे उनके सामने आकर उनके पति पीछे पीछे कृष्ण साथ उनके पीछे पीछे चलते, हिरणी आकर के कृष्ण से प्रणय की मानो भिक्षा मांग रही है, मयूर नाचने लगते हैं उनको देख करके, कोयल कुहू कुहू करने लगती है, सारी पृथ्वी नाचने लगती है, ऐसा सुंदर कृष्ण का रूप है। ज्ञान वैराग्य तो जानते ही हैं जैसे कैसे कृष्ण में है, ये छह चीजें जिसमें होती है, जैसे गाड़ीवान करीवान मैंने क्या, घोड़ावान घोड़े की गाड़ी जिसको है इसको गाड़ीवान कहते हैं, वैसे पहलवान, पहल माने शक्ति है उसको पहलवान, ज्ञानवान जिसको ज्ञान है, ऐसे छह भाग्य अर्थात गुण है उनको भगवान कहते हैं। और क्या विचित्र बात, भगवान वह माने अखिल प्राणियों में जो निवास करता है और अखिल प्राणी जिसमें निवास करते हैं उसको कहते हैं भगवान, हमारे अंदर भी है किंतु हम भगवान नहीं, और भगवान नहीं हम हैं, अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांड भगवान के अंदर में है, एक एक लोक में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, इसलिए ये भगवान है। गणेश जी एक बार अपनी पूजा के लिए सब देवताओं में होने लगी और पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आएगा वही होगा पूजनीय, नारद जी ने कहा कि क्या चूहे पर दौड़ेगा तू, सबसे पिछड़ गए, उन्होंने कहा जी राम नाम लिख दो, राम नाम लिख दिया, कभी उसी की तीन बार परिक्रमा कर लो, बस परिक्रमा कर दिया जगत के पूजनीय हो गए और लोग सब ताकते रह गए। तो जिसके नाम में ये शक्ति है वो परब्रह्म है, वो कृष्ण भगवान है, उस राम के रमण करते हैं सब जगह, इसलिए राधा रमण है। रमण करने वाले कौन है? यही राम कृष्ण है। इस चीज को इसलिए प्रसप्त किसी नाम व्यास जी ने देखा, सब देवता लोग उनकी विभूति हैं और अवतार सब एक हैं, किंतु कृष्ण की उसमें वैशिष्ट्य है। इस कृष्ण से ही राम नृसिंह कल्कि, कृष्ण ही नृसिंह के रूप में आए, वही वामन के रूप में आए, राम के रूप में आए। उपासना के साथ उसी को जबकि नहीं देखते हैं, उनकी ज्योति कुछ दिखलाई पड़ती है अंग की प्रभा, तो उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म अलग कोई चीज नहीं है। और परमात्मा जब साक्षी के रूप में इस शरीर में बैठते हैं जीवात्मा के साथ, तो उनको कहते हैं परमात्मा है? ये सब जगत की जगत आया है ब्रह्म की शक्ति से। उनकी शक्ति तीन है, जीव शक्ति, चीज शक्ति, माया शक्ति। जीव शक्ति साथ अनंत कोटि जीव जो हैं वो प्रकटित हैं। कृष्ण के यहां शंकरसेन जी हैं, उनके यहां से अलाखों कोटि जीव निकलते हैं जो कृष्ण की मधुर रूप में सेवा करते हैं। वो कभी जगत को नहीं देखा, वो बद्ध जीव नहीं हो सकते। न जगदत्ता नुवर्तन थे तत् तद ब्रह्म तद धाम मम। वहां से वहां पर माया नहीं है। आदमी माया में जुड़ता है कब? जब भगवान को भूल जाए। तो वहां पर तो सब समय ये माया है ही नहीं है, वहां पर तो योग माया है। कृष्ण को भूलेगा कैसे? और कृष्ण इतने सुंदर, इतने रमणीय, उनकी सेवा में नियुक्त जीव कभी भी नहीं गिर सकता। इसलिए वहां पर शंकरसन से बलदेव जी से जो जीव प्रकट हुए नित्य मुक्त हैं। और नारायण के पास में जो महाशंकरसन है उससे जो जीव निकलते हैं वो सब समय राम नृसिंह कल्कि वामन इत्यादि की सेवा करते हैं, नारायण की सेवा करते हैं, वो भी जगत में कभी नहीं गिरे। और वही शंकरसन का एक रूप है ना ये सहस्त्र शिष्या पुरुष जिसको कर्णाभ दिशाई दी, उनके अंगों से किरणों के रूप में छोटे छोटे जो परमाणु निकलते हैं। स्वरूपतः वो भगवान के नित्य दास होते हैं, पर भी वो भगवान को भूल भी सकते हैं नहीं भी भूल सकते। जब हम भगवान की तरफ में देखा उनके तरफ में, और जब हम माया की तरफ में देखा, हम ऐसे ही जीव हैं जो माया में पड़े हुए हैं अनंत काल से। इसलिए उन्होंने ये भी चीज को देखा। पर अभी मन के अनर्थम, जीव माया से परे होने पर भी इस संसार में आकर के भूल करके ये देखता है कि मेरे पिताजी हैं, मेरे भैया हैं, मेरी पत्नी है, पुरुष है। किंतु हम स्वरूप का भगवान कृष्ण के दास ये भी व्यास जी ने देखा। जैसे वही सुनियमाना जम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूप पत्य दे पुरुष शोक मोह भया। तब उन्होंने जो देखा, अनुभव किया, उसी को उन्होंने लिखा। ये शाश्वत संकीता है, इसको उन्होंने अपने ध्यान में तर्श दंतल ध्यान में उन्होंने पाया, और तब उसने जीवों के कल्याण के लिए लिखा। उन्होंने कहा, देखो तुमको एक बात बतलाऊं, मैं इसको सही नहीं समझा जाएगा। मैं पहले जन्म में दासी का लड़का था, नीच जाति का। मेरी मैया लोगों के घर का काम करती और कुछ मिल जाता हमारा पोषण करते किसी प्रकार से। एक दिन चार ऋषि हमारे गांव में आए और उनके साथ साथ और भी सब ऋषि लोग आए। मैं उनके यहाँ नियुक्त हो गई। वो लोग अपने तंबू लगाकर या किसी तरह से झोपड़ी बना करके चार महीना बरसात के दिनों में हमारे यहाँ रहे, और मैं छोटा सा बालक उनकी सेवा करके उन्हें कभी उनके पत्तों में प्रसाद रहता ले लेता, उनके चरणों की धूली कभी लगा लेता, और मधुर मधुर ये कथाएं सुनता, कृष्ण की लीला कथाओं भागवत की। मुझे भगवान की कथाओं में रुचि हो गई। जब चार महीने के बाद जाने लगे तो मैं रोने लगा। उस समय उन्होंने हमको एक मंत्र दे दिया जो भागवत में लिखा, और मैं मंत्र को करूं इसलिए मैं सोचा, किंतु मैया छोड़ती नहीं, वो लोग तो चले गए। मैंने कहा कि मैया दिन भर गोदी में लेकर के रखती है और हमको छोड़ती नहीं है। इतने में भगवान की इच्छा से उसकी मैया को सवेरे सांप काट दिया और मैया मर गई। मैया का कोई भी कर्म नहीं किया, कुछ नहीं, जंगल में भगे और वहां जाकर सुंदर सरोवर में स्नान किया और एक ऊंची जगह पर उन्होंने उस मंत्र को जपना आरंभ किया। कुछ दिनों में भगवान का दर्शन किया। दर्शन मिलते ही जाके चौंक उठे और उसके बाद में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, रोने लगे मैं कह दिया इस शरीर से दर्शन नहीं होगा, वो तो मैंने कृपा करके दे दिया। जब तुम्हारा अहम भाव दूर हो जाएगा, शरीर का भाव दूर हो जाएगा, दिव्य ज्ञान आएगा, ऐसे ही हमारी कथाओं का तुम प्रचार करो, जगत में घूमते रहो। और करते 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 तुम्हारा यह शरीर कपड़े की भांति छूट जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, तुम मृत्यु के मुख सिर के ऊपर में पैर रख करके और हमारे धाम में आ जाओगे। इस प्रकार से उनको जब सुनाया, व्यास जी ने अनुभव किया, अनुभव करके तब लिखा। गुरु कैसा होना चाहिए? नारद के समान होना चाहिए, वो गुरु है। जो कि कान के माध्यम से वो ऐसी शक्ति का संचार करे जो हमारी आत्मा जग उठे, उसके समस्त कलंक दूर हो जाए, उसका अज्ञान दूर हो जाए। जिस गुरु को स्वयं ही अज्ञान है, जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा, अभी नास्तिक स्कूल कॉलेज में, वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? यदि हरिदास ठाकुर के कॉलेज में जाए, यदि कोई हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी का जानते होंगे, अंधे, कखब अगर से कभी भेंट नहीं हुई, और भगवान की भक्ति समस्त विश्व को जानने वाले, उनके कॉलेज में यदि हम भर्ती हो तो कुछ समझ सकते हैं। इसलिए पता कि शब्द ब्रह्म का ज्ञान हो, पर ब्रह्म का ज्ञान हो, वेदों का शास्त्रों को जानने पर भी नहीं होगा यदि ब्रह्म की अनुभूति और भजन का बल नहीं होगा। जिसको गुरु के वचनों में भी विश्वास नहीं है, जो नाम तुमको देते हैं, इस नाम के द्वारा सब कुछ तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, इसको विश्वास नहीं है, वो गुरु होने के योग्य नहीं है। इस चीज को समझो अच्छी तरह से। जो भी भगवान के प्रति इतना भी विश्वास नहीं है जो हमारा कल्याण कर सकता, हमारा कुछ बाकी रह गया, जो भगवान का नाम करता है उसको क्या बाकी रहा? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम मरा मरा करते करते राम राम करने की जरूरत नहीं पड़ी, मरा 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 और सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ बन गए, और राम के लीला होने के पहले उन्होंने सब लिख करके छोड़ दिया, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि सब। एक समय की बात है, गुरु तत्व के संबंध में बतला रहा हूं। रामचंद्र जी की लीला चल रही थी, दंडकारण्य में शूर्पणखा आई, उसका नांग कान काटा गया, मारीची आया और सीता जी को रावण हर ले गया। राम विलाप कर रहे हैं, सीते तू कहां गई, पेड़ों से पूछ रहे हैं, बतलाओ तो सीता किधर गई। गोदावरी के तट पर करें गोदावरी अपनी सहेली सीता जी को देखा, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, और विलाप करके रो रहे हैं सीते सीते। हिरण से पूछे तुम्हारा वो तो बड़ी मित्र थी, वो कहां गई, कहीं हमको छका तो नहीं, अच्छा खाना समझते हैं ना, मैंने कहीं पेड़ के अंदर में तो छिप नहीं गई है, हमें छोड़ करके जा नहीं सकती, पेड़ों के जाकर के नीचे देखते हैं किसी हमारी सीता है कि नहीं। ऐसे बीवल हो गए, और उसी में शंकर जी अपने पत्नी सती जी को लेकर के राम की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, राम का दर्शन करने के लिए दंडकारण्य में पधारे। शंकर जी ने जब राम ऐसे रो रहे हैं तो बहुत दूर से उनकी लीला में विघ्न न पड़े, बहुत दूर से उनकी परिक्रमा की, तीन परिक्रमा की, जो उनको मालूम न पड़े, लीलाओं में डूबर हैं और उनके विघ्न न पड़े, इसलिए दूर से उनको प्रणाम करके साष्टांग जमीन में प्रणाम किया। सती जी ने उनसे पूछा, प्रभो ये कौन है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? तो ये परब्रह्म हमारे आराध्य राम है। कैसे हो? अरे ये स्त्री के बीचों में रो रहा है, उसको पता नहीं कि इसको कौन ले गया, और उसकी शक्ति नहीं जैसे उसको अपनी सीता को बुला ले, फिर ये राम कैसे राम रहा, परब्रह्म रो रहा है, हासिते हासिता कर रहा है, ये तो स्त्री के वशीभूत उसके लिए प्राण छोड़ देगा, पागल हो रहा है, ये कभी ब्रह्म हो सकता है? ये तो लस्ती पर्सन है, कामुक व्यक्ति है, ये राम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी हमारी बात पर विश्वास करो, कहिए आप हमारे गुरु हैं। पहला तो गुरु के वचन में डाउट नहीं होना, डाउट आने के पहले गुरु को पहचान करके गुरु करो, पानी पियो छान कर, और गुरु करो
जानकर।
और एक हड़िया लेनी है मिट्टी तो एक लकड़ी ले लो, लेकर के बजाओ। ठनठन करती है कि खनखन करती है? यदि ठनठन करती है तो ले लो, उससे काम होगा। और खनखन करती है मतलब क्या?
फटा हुआ है,
वो फटी हुई है, वो मतलब। तो यदि एक दो पैसे की हड़िया के लिए पानी को हम छान करके पीते हैं, दो पैसे की हड़िया को बजा करके लेते हैं, देख सुन कर लेते, गुरु ऐसे ही कर लिया और कर लिया तो जो गुरु कहा देगा वही करेंगे। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, टपी करके कैसे शौच किया जाता है इसका भी ज्ञान नहीं। जिसको जो वैष्णव की निंदा कर सकता है, जो कि जिसको तत्व का ज्ञान नहीं है, जो दिन में पांच बार बदलता है, जिसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु करने से पछताना पड़ेगा। दो दिन उनके बाद में वो गिर जाएगा, रसातल में चला जाएगा, तो कहा है गुरु कहां गए, गुरु कहां गए। इन चीजों को पहले परीक्षा करके करो, एक दो वर्ष तक देखो जैसे इनका चरित्र ठीक है कि नहीं, स्त्रियों के प्रति आसक्ति है कि नहीं, स्त्रियों को माँ बेटी और बहन मानता है कि नहीं, और उनसे कोई अटैचमेंट तो नहीं है, धन की कोई लालसा तो उनके अंदर में नहीं है, और ब्रह्म की अनुभूति है। ये सबको देख लो पहले, तब गुरु करो। और नहीं तो क्या होगा, दो दिन के बाद में वो गुरु गिर जाएगा, अपने गुरु की भी बात नहीं मानेगा, फिर क्या होगा? है हमारा गुरु गिर गया है। और नहीं तो ये कहना पड़ेगा, हमारा गुरु कह रहा है वो पूरा ठीक कर रहा है, फिर उसके साथ में नरक में जाओ साथ में। ऐसे पहले सब विचार करके करो। बड़ा पूर्व जन्म का सौभाग्य होगा तब सत्य गुरु मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। अब बतलाओ गुरु जी शंकर जी कैसे हैं? पर ब्रह्म को जानने वाले हैं, मंगलमय है, और उनकी पत्नी हैं ये, किंतु शिष्य है। गुरु के प्रति डाउट हुआ, जैसे इनको इसको प्रणाम कर रहे हैं, पूछा। एक तो डाउट नहीं होना चाहिए, किंतु डाउट हुआ। मैंने कहा ठीक है तो तू परीक्षा कर ले, यदि तुमको कोई शंका हो रही है तो परीक्षा करो। मैंने कहा जब ठीक है। शंकर जी आगे बढ़ गए, एक बस बैठे नीचे खड़े होकर के भगवत चिंतन करने, प्रभु इसकी क्या दुर्मति हुई जी, हमारे बातों में शंका हुई, इसका कल्याण हो। थोड़ी देर के बाद में वो तो खड़ी हो गई सती जी, देखा जैसे हम कैसे परीक्षा करें। यदि मैं सीता जी का रूप बना लूं तो ये कामी पुरुष होगा, संसारी पुरुष होगा, अज्ञानी होगा, जो ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है, तो दौड़ करके वो हमको पकड़ेगा और हमारे पास से सीते सीते तू कहां थी। तो मैं सीता का रूप बनाया, वर्ष सीता का रूप बनाया, और राम जहां पर की हे सीते सीते कर रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके सामने जाकर के खड़ी हो गई। किंतु राम ने देख करके भी नहीं देखा, वो पैरों से पूछते हुए रो रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ जब गए तो उधर से घूम करके उनके सामने फिर आई, फिर उधर से घूम करके फिर उनके सामने आई, किंतु राम ने कुछ भी नहीं कहा, अपने भाव में भी रो रहे। थोड़ी देर के बाद में फिर सामने जब आई तो राम ने क्या किया, कहा माता जी भगवान शंकर तो आगे चले गए, आप किस लिए पीछे रह गई? और उनको प्रणाम किया उसी रूप में। कहा जी ये कैसे जान लिया हमें? अपनों को प्रणाम करने के लिए झूठी या नहीं, ये हमारे शंकर जी झूठ नहीं कर सकते हैं, ये ठीक ही कहा था, हमको भूल हो गई थी ना? तो उसको और निष्ठा को दृढ़ करने के लिए उन्होंने क्या किया, साथ ही साथ जबकि वो प्रणाम करने गई तो देखा क्या, कितने पेड़ पौधे जहां जो कुछ है अब वो सब सीता जी और राम ही राम दिखाई पड़े, सियाराम मैं सबसे यहां सिया, वहां पर सीता, वहां पर सीता, वो जो सीता जी अलग हो गई हैं, ये भाव दूर हो गया, और सब जगह सीता जी को और राम को देख रही हैं, और उस समय प्रसन्न मुद्रा में देख रही हैं, सर्वत्र झुक करके एकदम दंडवत प्रणाम किया जी, प्रभु हमारे ऊपर में कृपा कीजिए। और जब ही झुक करके दंडवत किया तभी देखा जी राम वैसे ही हासिते तू कहां है, हासिते कहां, और भूल गए सब कुछ। अजी ये तो मेरा बहुत बड़ा भारी अपराध हुआ। खैर जैसे तैसे सीता जी का रूप छोड़ करके सती जी का रूप बनाया, और धीरे धीरे कुछ लज्जित रूप में कुछ दर्शी हुई शांति हुई आगे बढ़ी। जब शंकर जी के पास में आई तो शंकर जी ने कहा कहो परीक्षा ली कुछ? प्रभु आपने जो कहा था वही ठीक है, मैं क्या उसकी परीक्षा लूं, और झूठ भी बोल दिया। ये सब व्यवहार नहीं होने चाहिए। उसको समझने की गुरु के बात में शंका नहीं हो करके, यदि वो रियलाइज यदि सोल है, गुरु तत्व तो भगवान को जानने वाले हैं, तो उनके बात में संदेह मत करो, उनका भगवत का ही स्वरूप समझो। किंतु जो भगवान का स्वरूप नहीं है, कुछ जानता नहीं है, उसको कुछ सीखना बाकी है, जिसको धन का लोभ है, जो लोग ये कहते हैं कि अपनी दीक्षा ले लिया अब स्त्री से बात मत करो, रुपया जितना है सब हमको दो, स्त्री को मत दो, बच्चों को मत दो, और संन्यास लिया तो हमें अधिकार हो गया कि सब स्त्रियों के साथ हम रहेंगे, और कुछ दिन के बाद ही हम लेकर के इनको अपना विवाह भी कर लेंगे हम। तो ऐसे गुरु गुरु नहीं है, आदर्श होने चाहिए। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं, एक तो गुरु से की बात में अविश्वास मत करो, गुरु ऐसे ही बनाओ जो कभी गिरने वाला ना हो, सब शंकाओं से अतीत हो। दूसरी बात, गुरु से यदि कोई बात हुई तो उसे छिपाओ मत, अपना दिल खोल तक रख दो, जैसा है वैसा ही रख दो, झूठ मत बोलो उनसे। उन्होंने झूठ भी बोला, मैंने कहा कि ठीक है, जो होनी है सही होगी। उन्होंने मन ही मन में प्रतिज्ञा की, जिन्होंने हमारी आराध्या सीता देवी का रूप धारण किया है और मेरी सदा के लिए मैया बन गई, और इस शरीर से मेरी मैया ही रहेगी और मेरी पत्नी नहीं रहेगी, संकल्प किया, इनके साथ में हमारा स्त्री का जो व्यवहार पति पत्नी का व्यवहार है अब ये दूर हो गया, और हम इनको अपना एक जैसे कि माता होती है इस रूप में मानेंगे। संकल्प करते ही पुष्प वृष्टि हुई सीता जी, और वाज धन्य धन्य आपके समान ऐसी कोई कुछ नहीं कर सकता है प्रतिज्ञा। सती जी ने पूछा जी आपने कोई प्रतिज्ञा की, तो उन्होंने हां भी नहीं कहा, नहीं भी नहीं कहा, चुपचाप चलते रहे। अब इनके अंतर में से क्या बात हुई, अब जब आश्रम पर गए कैलाश में, तो आज बाएं तरफ में नहीं बैठा करके सामने तरफ में माता जैसा आसन देकर के बैठा, यहां पर बैठी, कोई सेवा करने जाए बस यही सेवा करने के लिए प्रस्तुत, जैसे माता की बेटा सेवा करता है। अब इनके अंदर में बड़ा भारी पिता पैदा हुआ, हमने गलती की, ठीक। मैंने कहा कि जब शंकर जी शरीर को ही नहीं ग्रहण करेंगे पत्नी के रूप में, तो इसको जल जाना ही अच्छा है, इसलिए अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर की आहुति दे दी। पिताजी ने उनका अपमान किया इसलिए नहीं मरी, क्योंकि शंकर जी ने उनको पत्नी के रूप में छोड़ दिया, इसलिए इस शरीर से जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। जब गुरु ही रुष्ट हो गया तो भगवान की रक्षा नहीं कर सकते, और भगवान रक्षा करते हैं, गुरु जब ही रक्षा करने वाला है तो भगवान अपने आप रक्षा करते हैं। गुरु भी ऐसा होना चाहिए, शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। फिर हिमाचल में जाकर के उनकी कन्या पार्वती के रूप में होकर के फिर से उनकी शादी हुई, तब फिर ग्रहण किया। इसलिए गुरु तत्व ऐसा होना चाहिए, जो चीज उसको गंभीरता से नहीं कहेंगे। यदि गुरु गुरु कहे जैसे देखो हमको उस स्त्री से प्रीति हो गई, उस स्त्री को छल से बल से रुपये देकर भी हमारे पास लाओ, तो इस गुरु की आज्ञा पालन करनी चाहिए कि नहीं, हमको अमेरिका में सबसे जो बेस्ट कार है, बेस्ट कार का मैं मूल्य नहीं जानता जी कितना है, वो कार यदि तुम लोग सब ला करके दो तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, तो ऐसे गुरु की इच्छा को पूर्ण करोगे कि नहीं, खबरदार मत करना, उनको दूर से प्रणाम करो, क्योंकि भगवत तत्व को नहीं दे सकते, हमारे अंदर में प्रेम नहीं भर सकते, कृष्ण तत्व को नहीं दे सकते, जिनमें गुरुत्व नहीं है, ऐसे गुरु से क्या, यदि हो गया तो हो गया, और दूसरा कोई शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु करो, ऐसे गुरु को यही मना है। ये सब श्रीमद्भागवत में जगह जगह पर वर्णित है ये सब चीजें, इसलिए इन सब चीजों को भागवत से हम शिक्षा करेंगे, अगले तो समझ नहीं सकेंगे। पहले तो ये गुरु तत्व रहा, गुरु में एक चीज का विचार करना है, साधु संघ के द्वारा भक्ति होती है, किंतु कैसे साधु संघ से भक्ति होगी, एक नकली भक्ति होती है, असली भक्ति होती है। इन चीज को समझें। यदि कोई उसको निराग वक्ता या सराग वक्ता कहा गया है, जो कि संसार से विरक्त है किंतु सभी किसी को अवज्ञा नहीं करता, आसक्त का मतलब जैसे कि नारती है, तो किसी से झगड़ा करते हैं न, किसी प्रकार से जीवों को भगवान की तरफ में ले जाते हैं, सब पर उनका प्रेम है, ये वैराग्य का मतलब है। जहां भक्ति होगी वहां पर ज्ञान वैराग्य अपने आप होंगे। इसलिए विरक्ति होगी संसार के प्रति, माने इससे हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा, सब प्राणियों को देखेगा किंतु ये मेरी उपभोग्या है स्त्री, या ये मेरा बेटा है हमारा उपभोग हमारी सेवा करेगा, ये सब अटैचमेंट नहीं होता, सबके प्रति भगवत भाव होकर के ये भगवान का ये दास है, सबके प्रति प्रीति रहेगी, ये है वैराग्य। विशेष रूप से नाराग भगवान के प्रति अनुराग का होना, इसको कहते हैं वैराग्य, और भगवान के छोड़ करके दूसरी वस्तुओं के प्रति वैराग्य हो इसको कहते हैं अपने आप होगा, ये उस गुरु में भी होना चाहिए, भक्ति होने से ही अपने आप आएगा। तो इन सब गुणों से विभूषित होने पर उसको कहते हैं निराग वक्ता, निराग गुरु। जैसे निराग वक्ता हैं सुखदेव गोस्वामी जी, नारद जी, व्यास जी, महाप्रभु के जितने भक्त लोग हैं, ये सब निराग अनुभूति है परम तत्व की।